रस सुधारस भवन समय सार किम सरोज नमत हो सुख सारिणी बानी विविध विधि वरम तविश्व प्रमाण शांत मोन्वित हित हर कल्याण मैं नमो जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन मैं नमान दिन दान धन मतन सी मंगल कर्म सब विधि मंगल हो तो दंगल दूर समझो भानु
कर्मानुयोग परिचय पुस्तक के आधार से कर्मानुयोग के कुछ यहाँ विषय ले रही हूँ। ये समास और पर्याप्ति ये दो टॉपिक हमने लिए थे, याद है ना? ये समास कितने देखे थे? 14। और पर्याप्ति कितने देखे थे दीपाली? पर्याप्ति आप बोलो कौन सी चीज? वेरी गुड, आप बोलो। मैंने पर्याप्ति
ये हाँ
नोज में जो जानवानी पावर छे ने
इंद्रिय मात्र
अने श्वासोश्वास में तो ये तो
शरीर की क्रिया था
अने
खाली ब्रीदिंग में ऑक्सीजन इनको
और जो ऑक्सीजन वो जो CO2 निकल जाता है
कार्बन डाइऑक्साइड
उसको ले लेना चाहिए
क्योंकि अलग अलग जो जीव है उनका प्रोसेस बहुत ही अलग अलग है।
अभी गर्भ में बालक है वो कैसे प्रोसेस काम करता है? वो तो बाहर आए बिना श्वास लेता ही नहीं है, तो वहाँ भी ऑक्सीजन का फिर वो मदर का ब्लड जाता है ना, तो वो भी ऑक्सीजन ले ले लेता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देता है। अन्य उनके उनके लिए ऐसे कहा नागरिक दिखता है या कोई भी ऐसी चीज है कि पूरे शरीर में से वो ऑक्सीजन लेते हैं। नाक से हवा अंदर जाएगी और फिर वो तो पूरी फिजियोलॉजी आपको सिखानी पड़ेगी, वो तो फेफड़ों में वो ऑक्सीजन वो ब्लड में जाएगा और फिर वो वहाँ बाहर निकाला जाएगा। अभी मछली है वो तो जीव के थ्रू उनका ऑक्सीजन इनटेक चलता है, वो अलग अलग रचना हो तो घ्राण इंद्रिय और श्वासोश्वास ये दोनों को मिक्सअप नहीं करना है। सेंसरी ऑर्गन है वो,
सेंस ऑफ स्मेल है वहाँ और वो जो ब्रीदिंग का क्या है
उपकरण है वो,
अरे वो से जो ब्रीद कर सकते हैं।
तो पर्याप्ति को छह देखिए हमने, वो जीव की शक्ति है। साथ साथ पर्याप्ति ने श्वास लेने की और छोड़ने की जीव में ताकत पैदा हो जाए। पहले देखो ना आहार पर्याप्ति हमें क्या,
देखो आहार हमें क्या भोजन करना वो आहार यहाँ नहीं है,
आहार के बहुत अलग अलग अर्थ होते हैं।
आहार यानी सुजल परमाणुओं को, यानी अभी कल हमने जिसको नो कर्म वर्गना कहा था, नो
कर्म वर्धना को ग्रहण करना उसको कहते हैं आहार। अब विग्रह गति में जीव यहाँ से मरा तो दूसरी गति में जाता है तो बीच में उसको कहते हैं वो विग्रह गति। तो विग्रह गति में तो उसने शरीर अभी धारण नहीं किया, उसने पुद्गल परमाणु लिए नहीं है, तब उसको कहेंगे वो आहारक नहीं है, अनाहारक है। आहार यानी पुद्गल परमाणुओं का ग्रहण करना उसको नहीं है। जब वहाँ जहाँ जन्मना है वहाँ वो पहुँचेगा, वहाँ से पुद्गल परमाणु वो ग्रहण करेगा और फिर उन पुद्गल परमाणुओं को वो शरीर रूप से परिणमाएगा, परंतु वो परिणमाने के पहले उसमें ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है कि वो ग्रहण करे, उसको फल रूप रस रूप परिणमावे, फिर उसको शरीर रूप बनावे और सारा श्वास विश्वास रूप बनाए या भाषा रूप परिणमाने की शक्ति, मन द्वारा जानने की शक्ति, ये सारी शक्तियाँ उसमें तैयार हो जाती है। यानी ये तो हुआ पर्याप्त, ये तो हुआ कारण और अभी ये ऐसी शक्ति होने के बाद जो अक्षर कार्य करेगा, पहले तो श्वास श्वास लेने की ताकत आई उसमें, फिर श्वास लिया वो हो जाएगा श्वास, ये कार्य हुआ ना श्वास लेना और छोड़ना, श्वास और उच्छ्वास लेना और छोड़ना ये अक्षर कार्य हो जाएगा तो उसको हम प्राण कहेंगे। पहले तो इंद्रियों के द्वारा जानने की शक्ति उसमें तैयार हो गई, वो हो गया इंद्रिय पर्याप्त। फिर इंद्रियों के द्वारा एक्चुअल जानने का काम चल रहा है उसका, वो हो जाएगा इंद्रिय प्राण। है ना, पर्याप्त ये कारण हुआ। पहले तो जीव में ऐसी कैपेसिटी तो हो कि वो ऐसा ऐसा कार्य करे, वो हो गई पर्याप्त। और फिर ये शक्ति ऐसे उसमें डेवलप हो गई, फिर एक्चुअल कार्य करेगा वो हो जाएगा प्राण। अब आप प्राण के बारे में हम समझेंगे। पर्याप्ति तो समझ में आ गई ना, पर्याप्ति छह हो यानी जिसकी जितने होती है, पंचेंद्रियों में कितनी देखी थी हमने, छह असंग्य पंचेंद्रियों में, और चार इंद्रिय तीन इंद्रिय दो इंद्रिय वालों में पांच होती है और एक इंद्रियों में चार। तो भले वो जीव पर्याप्त हो या अपर्याप्त हो उसकी पर्याप्ति चार पांच या छह होगी, ऐसे तो चार तो होती है और पर्याप्तों की एक भी पूरी नहीं होती, बराबर पर्याप्तों की जितनी है चार है पांच है छह उतनी पूरी हो जाएगी। जब तक पूरी नहीं होती है तब तक उन जीवों को निर्वृत्ति अपर्याप्त कहेंगे। जब तक दूसरी शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होती है तब तक की जो अवस्था है उसको कहते हैं निर्वृत्ति अपर्याप्त। और उसके बाद उसको क्या कहेंगे, पर्याप्त। तो पर्याप्ति के बारे में कोई अभी डिफिकल्टी नहीं है, पर्याप्ति समझ में आ रही। अब आज हमारा विषय है प्राण, ये पेज नंबर 133 है इसमें, आपने कौन से आपकी पुस्तक आ रही है, आपके पास नहीं है पुस्तक, इंडिविजुअल लाइफ में है, आओ 133 पेज पर है। आज अपना नया टॉपिक है प्राण प्ररूपना। सबको 5-16 ये पहले दो पैराग्राफ के बाद तीसरा पैराग्राफ से पढ़ेंगे। पर्याप्ति की चर्चा के पश्चात प्राण प्ररूपणा संबंधी आज हम जानकारी लेंगे। प्ररूपणाएं चल रही है ना, हमारी 20 प्ररूपणाएं, इसमें हमने गुणस्थान ये एक प्ररूपणा हुई और मार्गणा स्थान में 19 प्रकार की प्ररूपणाएं देखी, उसमें से 14 तो मार्गणा और बचे क्या क्या, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग। उसमें से हमने जीव समास देखे 14 और पर्याप्ति देखी, ये पर्याप्ति कैसी होती है, इसका क्या अर्थ होता है, नींद क्या है, कैसे सब देखा। आज अभी प्राण के बारे में चर्चा करें। देखो कल से टाइम से आए बीच में चले गए, आपके आपके गए मेरे नहीं गए, है ना, तो आप अधिक पढ़ सकते हो उसमें, जरा जल्दी आना है। आप ही के लिए तो चालू किया है, वैसे भी आपके लिए बहुत चालू की है। देखो, पर्याप्ति की चर्चा के पश्चात प्राण परूपना संबंधी आज हम जानकारी लेंगे। आपने प्राणी शब्द सुना है ना कभी? सुनी संसार में प्राणी दुख से डरते हैं, ऐसा सुनते ना? तो प्राणी शब्द तो हमारे सुनने में है, तो ये कैसा पैर हुआ प्राणी, जिसके पास प्राण है वो हुआ प्राणी। धनी किसको कहते हैं? जिसके पास धन है वो हो गया धनी। तो हमारे पास जो चीज है उसके ऊपर से वो नाम आता है। तो प्राणी यानी जिसके पास प्राण है, यानी जीव, जीव को ही प्राणी कहते हैं, क्योंकि जीव ये प्राण से युक्त है। तो जिसके पास प्राण पाया जाता है वो प्राणी। देखो, प्राणी शब्द से हम परिचित है, सजीवों को प्राणी कहते हैं, प्राण वाला वह प्राणी है। तुमने कहावत सुनी होगी कि मेरा बच्चा मेरा जीव है मेरा प्राण है, ऐसे ही ना माँ क्या कहती, अरे मेरा बच्चा मेरा जीव की प्राण है, यानी जीव को ही प्राण कहा। जीव मरण होने पर हम कहते हैं ना कि अरे इसका प्राण निकल गया, इन्हें जीव निकल गया। ये तो हम कहने में कहे ना कि अरे ये अभी इसका प्राण पसेर उड़ गया, यानी कुछ मुझे निकल गया, वो जीव निकल गया, तो हम उसको कहते प्राण निकल गया। चैतन्य भाव प्राण को धारण करने वाला जीव है, चेतना यानी ज्ञान और दर्शन। तो जिसमें चेतना पाई जाती है यानी जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है, तो वही तो उसका भाव प्राण है। अभी हम यहाँ दो भेद करेंगे प्राण के, द्रव्य प्राण और भाव प्राण। तो भाव प्राण जीव से कब निकल जाएगा? हाँ, चेतना यानी भाव प्राण, ज्ञान दर्शन यानी भाव प्राण, वो जीव से कब अलग होगा? यहाँ जीव मर गया, कोई मनुष्य मर गया, तो उस जीव के भाव प्राण निकल जाएंगे। वो जीव की छाप है ना, जीव अन्य गति में गया, यहाँ से मरकर देव हुआ, तो उस जीव का भाव प्राण उसके साथ है कि उससे छूट गया? तो ऐसा कभी नहीं होगा कि जीव से उसका भाव प्राण जुदा हो। सिद्ध परमेश्वर बन गया तो वहां भी रहेंगे, तो जीव सदा ही अपने चैतन्य भाव प्राणों से युक्त ही रहेगा, कभी भी उससे उसका वियोग नहीं होगा, यानी जीव का प्राण कभी उसमें से निकल ही नहीं सकता। इसका अर्थ क्या हुआ? जीव कभी मर ही नहीं सकता, बराबर। अभी जिसको हम मरण कहते हैं, वो इस द्रव्य प्राणों से वो छूट गया, वो अलग हो गया और अन्य गति में गया, वहाँ अन्य द्रव्य प्राण उसने धारण कर दिए, तो हम उसको कहते हैं मरते हैं। पर एक्चुअल जीव कभी मरेगा क्या? क्योंकि उसको प्राणों से कभी रहित होता ही नहीं है, हमेशा उसका जीवन 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 यानी चैतन्य भाव काम जो ज्ञान दर्शन ज्ञान दर्शन ज्ञान दर्शन, वो हमेशा चलता रहेगा अनादि से अनंत काल तक। देखो इसी यहाँ क्या लिखा है, चैतन्य भाव प्राण को धारण करने वाला जीव है, चेतना यानी ज्ञान दर्शन रूप शक्ति, इस चेतना को ही प्राण कहते हैं। जहाँ चैतन्य व्यापार रुक जाता है, वहाँ इंद्रिय और शरीर के होते हुए भी चेतना के अभाव में प्राण निकल गया, इस निष्कर्ष पर हम पहुँचते हैं। देखो, अभी जो मनुष्य जीव है, कोई बीमार है, तो वहाँ जब तक उसका जानने रूप कार्य चल रहा है, तब हम जानते हैं ये जीव, ये मनुष्य जिंदा। अब फिर डॉक्टर आते देखते कि वो हलचल नहीं रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, आंखें बंद एक एक खोल नहीं रहा है, पिंच करके देखते तो कोई रिस्पांस नहीं है, हाथ को देखते तो कोई वहाँ पल्स नहीं है, उसके बीटिंग नहीं है, हार्ट बीट कोई पल्स नहीं है, जानने का कुछ वहाँ कार्य नहीं हो रहा है, वो जानने का कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो क्या डिक्लेयर करता है? ये डेड, डेड यानी वो अभी जीव था यहाँ, वो निकल गया। हम उतने मात्र को ही समझ रहे हमारा नाश हो जाएगा, डरते हैं ना, नींद नहीं आती बहुतों को, क्यों? कि हम मर जाएंगे, परंतु उस जीव निकल जाता है वहां से, अन्यत्र जला जाता है, जीव नहीं मरता कभी। शरीर के साथ उसका संयोग हुआ था, शरीर यहाँ पड़ा रहता है और जीव अन्यत्र निकल जाता है, उसको हम मरण कहते हैं। परंतु वो जीव का मरण नहीं है एक्चुअल, वो संयोग, शरीर का संयोग होने को जन्म कहते हैं और उसका वियोग होने को मरण कहते हैं। परंतु जीव तो जीव रूप से हमेशा बना रहता है, जीव सदाकाल भाव प्राणों से युक्त ही होता है, प्राण विरहित कभी होता ही नहीं है। हमारा जीव नाम कैसे पड़ा इसका कभी विचार किया है तुमने? जीव नाम है ना, तो जीव नाम है तो अपना कुछ गुण सार्थक करने वाला होगा, तो जो हमेशा जीता है वो जीव है क्या, जो कभी मरता ही नहीं है क्योंकि हमेशा वो प्राण से युक्त ही है। भाव प्राण जो है चेतना, ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन और उसका हमेशा कार्य भी होना, जानना जानना जानना, इससे रहित वो जीव कभी होता ही नहीं है। जो जीता है, पूर्व में जीता था और भविष्य में भी जिएगा हमेशा, उसका नाम है जीव। जो स्वयं जीवन है उसे भला मरण की चिंता कैसे हो सकती है? वो जीवन स्वरूप ही है, जीव का स्वरूप ही जीवन है। परंतु इस जीव का दुर्भाग्य तो देखो, यह जीव ऐसा बुद्धू है कि मरण के भय से ही मरा जा रहा है। काहे की चिंता है? मरण का भय है उसको। किसको? जो त्रिकाल रहने वाला है, जो त्रिकाल जीने वाला है, उसको मरण की चिंता हो रही है। शरीर के बिना मैं कैसे रह सकता हूँ? क्योंकि उसने शरीर को ही अपना माना या मैं रूप माना, या शरीर के बिना मेरा अस्तित्व है ऐसा उसको पता ही नहीं है, इसलिए कहता है कि शरीर के बिना मैं कैसा रहूं? मुझे जीने के लिए हवा, जल, अन्न आदि की जरूरत है, ऐसा वो मानता है। और उनके कारण मेरा अस्तित्व टिका हुआ है। अपना अस्तित्व किसके कारण टिका है दीपाली? हर एक द्रव्य का अस्तित्व क्यों टिका है? क्यों है? अस्तित्व गुण टिका है। और वो उसका अपना, क्योंकि जो है वो हमेशा से है, जो अभी है ना, हम अभी है कि नहीं है, तो पहले भी थे और भविष्य में भी रहेंगे, तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। जो जो द्रव्य है वो अनादि से अनंत काल तक होता है, कोई नया द्रव्य उत्पन्न नहीं होता है, और कोई जो है वो कभी मरता नहीं है, कभी नाश नहीं होता उसका। देखो कितनी आकुलता कम हो जाती है, क्योंकि एक कल्पना में हम सोचते रहते हैं, अरे क्या होगा, मेरा अभाव हो जाएगा, मेरा नाश हो जाएगा, मैं नहीं रहूंगी, मैं तो अनादि से अनंत काल तक रहने वाली चीज हूँ, ऐसा जब हम सोचते और पक्का उस पर विश्वास रखते हैं तो सारी आकुलताएं कम हो जाती है। ये बहुत सारे लोग दवाई क्यों लेती है? मरण के भय से ही दवा लेते हैं। एक्चुअल कोई डिसीज नहीं हो तो डिसीज के भय से ही लेते, क्यों नहीं तो डॉक्टरों को कैसे चले? क्यों भाभी? मैं मेरी बात कर रही हूँ। हो जाती है, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध रहते हैं, परंतु जीव की आकुलता इतनी है कि उसको अगर समझ आ गया दवाई नहीं लगे उसके चलेगा इसी चार पांच दिन में ठीक होगा, नहीं नहीं आप पहले इंजेक्शन दे दो। ये जो आकुलता है ना, जल्दी है उसको सारी चीजों की आकुलता मुख्य उसमें पड़ी हुई है अंदर। अब अगले पेज का, हे जीव, सिद्ध भगवान जीव है या नहीं बोलो आप? वो जीव है कि नहीं है? तो उनको कितने शरीर है? सिद्धों को शरीर है कि नहीं है? नहीं है। क्या बोलते आप? नहीं है ना, तो फिर वो जी रहे कि नहीं जी रहे? शरीर बिना जी रहे कि शरीर के साथ जी रहे? यानी ये क्या सिद्ध हुआ कि जीव हमेशा शरीर के बिना ही जीता है, शरीर अलग है और जीव अलग है, बराबर? वे तो अनंत काल तक, एक दो समय के लिए नहीं, अनंत काल तक अशरीरी रहते हैं, फिर भी अनंत सुखी है, अनंत ज्ञानी है। हे जीव, तू ही तो अशरीरी ही है, हमने अपने को क्या माना है, हम शरीरी है ऐसा माना है। शरीर में इतनी एकत्र बुद्धि हो गई है कि शरीर से भिन्न अपना अस्तित्व है ऐसा बताने पर भी बार बार आचार्य कहते हैं, फिर भी उस पर विश्वास नहीं आता। तो इसको यही मैं हूँ ऐसा जन्म से मरण तक हम समझते रहते और इतनी लाइफ स्पैन इतना ही मैं हूँ ऐसा मानते। तू भी तो अशरीरी ही है, तेरी सत्ता तेरा अस्तित्व तेरे में है, तेरे अपने कारण वह कायम है, स्वयं सिद्ध है ना और स्व सहाय है। पंचाध्याय में आया ना, दूसरे किसी कारण से वो बना नहीं है या टिका नहीं है, उसको हमेशा रहने के लिए और पलटने के लिए भी अन्य किसी द्रव्य की उसको अपेक्षा नहीं, सहाय की जरूरत नहीं है। वो तो अपने आप उसकी स्वयं सिद्ध है, इसी उसकी ताकत है कि स्वयं टिका रहे और स्वयं परिणमन भी करे। तेरा अस्तित्व तेरे में है, तेरे अपने कारण वह कायम है, चैतन्यमय है। हमारा अस्तित्व कैसा है? चैतन्यमय है, यानी ज्ञान दर्शनमय अपना अस्तित्व है। शरीर का अस्तित्व भिन्न है और वह अचेतन है। शरीर अचेतन है तो उसका अस्तित्व भी अपने से भिन्न है। तू तो एक जीव द्रव्य, देखो अपनी पहचान करा रहे हम कैसे है। अब यहाँ ऐसा बहना, मैं तो एक जीव द्रव्य, ये वाक्य रोज एक बार कहना आप अपने आप को, क्या मैं तो एक जीव द्रव्य चेतना गुण का धारी अरूपी संकोच विस्तार वाला असंख्यात प्रदेशी, वो मैं एक जीव द्रव्य हूँ ना। ये वाक्य मोक्ष और प्रकाशक में लिखा हुआ है दूसरे अधिकार। तू तो एक जीव द्रव्य चेतना गुण का धारी, कैसा है, रूपी है कि अरूपी है, अमूर्तिक है ना, तो अरूपी, अरूपी कहो या अमूर्तिक कहो एक ही बात, कल सुना था ना पंचाध्याय में, अरूपी और कैसा है, संकोच विस्तार वाला, कभी हाथी के शरीर इतना हो जाता है, कभी सीकी इतना हो जाता है, तो संकोच विस्तार की शक्ति है जीव में, इसके प्रदेश फैलते भी और सिकुड़ते भी, तो संकोच विस्तार वाला, परंतु उसका प्रदेश एक भी कम ज्यादा नहीं होता, प्रदेश उतने से उतने ही असंख्यात रहते हैं, भले उतने कितने केवली समुदाय में पूरे लोकाकाश जितने फैल जाते हैं, या निगोद शरीर में इतनी छोटी अवगाहना वाला हो जाता है, फिर भी उनके प्रदेश एक भी कम नहीं होता, असंख्यात प्रदेश हो जाते हैं। इसे ना सारी पूरी फैलाओ 9 मीटर की, 9 बार की, और फिर छोटी से छोटी गली करो, वो सारे समा जाते हैं ना छोटे स्पेस में, या स्पंज इतना बड़ा है मुट्ठी में दबा दो, उसका सत्संग कुछ बढ़ा क्या या कम हुआ? जितना सत्संग से वो कायम है, फिर भी हम उसको दबा देते तो इकट्ठा छोटी जगह में वो समा जाता है। वैसे आत्मा के प्रदेश भले फैले या सिकुड़ जाए, वो असंख्यात ही रहते हैं, उसमें कुछ कम ज्यादा नहीं होता। तो तू तो एक जीव द्रव्य चेतना गुण का धारी अरूपी संकोच विस्तार वाला असंख्यात प्रदेशी है। अब शरीर कैसा है, अपने से भिन्न जानना है ना इसको, तो शरीर तो मैं कितने था, मैं एक था, एक जीव द्रव्य लिखा है कि 2 4 5 लिखा है, मैं एक जीव द्रव्य लिखा है। अब यहाँ शरीर में कितने, देखो शरीर तो अनंतानंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, 1 2 4 नहीं, अनंतानंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। और कैसा है वो, अचेतन है। और कैसा है, रूपी है, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं कि नहीं, शरीर दिखता है ना हमें, दिखता है, हाथ लगाए तो लगता है ना, स्पर्श हम जानते हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये क्या है, पुद्गल है। और मैं कौन हूँ, आत्मा कहो या जीव द्रव्य, इसको जानने का कार्य कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, इसमें जानने की कोई कैपेसिटी नहीं है, ये जो शरीर है रूपी है इसमें जानने की कोई पावर नहीं है, यहाँ जो जो जानने रूप कार्य हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ, और मैं अकेला एक जीव द्रव्य हूँ, और ये शरीर जो है वो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, जो अचेतन है, रूपी है, गलन मिलन क्रिया से युक्त है। गलना यानी उसमें से बिखर जाना, परमाणु निकल जाना, और मिलन यानी बाहर से आकर कुछ मिलना। हर समय में अनंत परमाणु, शरीर के भी अनंत परमाणु आकर मिलते हैं और पुराने निकल जाते हैं, और ऐसा ये आना और जाना उसका चलता रहता है। और फिर शरीर तो ऐसा कैसे, जितना कम दल हम के उतना ही आज दिख रहा है, परंतु उसमें अनंतानंद से निकल गए परमाणु और अनंतानंद से नए आ गए। आपने नदी देखी कभी, रिवर? कल देखी थी, आज भी उतनी दिख रही है। वो पानी वही है कि दूसरा आया? कल जो पानी देखा था वो कहाँ चला जाता है? बहकर अगले गांव में चला जाता है, और वहाँ नया पानी आता है, फिर भी नदी वैसी की वैसी दिखती है। वैसे यहाँ क्या है, शरीर के परमाणु अनंत नए आते हैं और पुराने में से अनंत निकल जाते हैं, और शरीर तो वैसा कल जैसा हमने आईने में देखा था वैसे आज भी दिख रहा है। हमें ऐसा नहीं लगता कि कुछ निकल गया और कुछ नया आया, तो वैसा के वैसा दिखता है। और मैं भी कोई अन्य बदल जाता हूँ कि मैं तो वैसा का वैसा एक ही, वही का वही हूँ, मैं तो वही का हूँ एक ही, और शरीर के परमाणु आते ही जाते हैं और मैं तो कायम यहाँ वैसा ही रहा हूँ। तो ऐसी उसकी भिन्नता अपनी जाननी चाहिए। जानने वाला तो मैं, शरीर तो कुछ भेद ज्ञान नहीं करेगा क्योंकि वो तो अचेतन है, जड़ है, उसमें कोई जानने की पावर नहीं है। जानने की पावर जिसमें है वही तो ये भेद विज्ञान कर सकेगा। शरीर के परमाणु ऐसा नहीं कहते कि ये जीव मेरा है, हम ही ऐसे मूर्ख है कि शरीर को मेरा है ऐसा मानते हैं, है ना, कि शरीर ने कहा जरा मेरा अपना मानो। वो तो कॉन्ट्रैक्ट है उसका पुजगल का, वो अपने कारण आता है, अपने कारण चला जाता है। जैसे कर्म का उदय है तो वैसे उसका एक एक खुदगल परमाणु का आने का और जाने का निश्चित है। हम चाहते रुके रहे, अभी बाल गिरे नहीं तो क्या, छोड़कर चले जाते हैं, तो उसका एक एक का अपना टाइम निश्चित है। शरीर भी पूरा इतना अनंत खुदगल परमाणु का पिंड, वो यहाँ पड़ा रहेगा और हम चले जाएंगे, कि उसका जीव के साथ संयोग जितना कॉन्ट्रैक्ट है उतना निश्चित है। एक समय तक भी वो अधिक नहीं रहेगा और एक समय भी पहले नहीं चला जाएगा, ये सारा निश्चित है। तो फिर अपनी आकुलता कमी होती है कि नहीं होती? देखो तत्व ज्ञान से तो लौकिक में भी कितने निश्चिंतता आ जाती है। हम हाय 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 रात दिन चलती है ना हमारी, ये कल्पना में ही ज्यादा चलता है, भविष्य की चिंता में या भूतकाल के किसी न किसी कल्पना में हम खोए रहते हैं और अपना वर्तमान सारा बिगाड़ देते हैं। वर्तमान का एक एक कल हमने देखा है ना कि कितना अपना मनुष्य बहुत दुर्लभ है, चिंतामणि रतन जैसा मिला है, तो उसका एक एक समय हमें अपने को ढूंढने के लिए, अपने को पहचानने के लिए काम में लाना था। देखो क्या कहते हैं, जो अचेतन है रूपी है, किसकी बात कर रही है? शरीर की। जो अचेतन है रूपी है, गलन मिलन क्रिया से युक्त है, उसमें निरंतर अनंत परमाणु आते जाते रहते। अरे बाबा, इस अचेतन के संयोग को तूने स्वयं का जीवन मान लिया। इस शरीर का संयोग होने पर मैं जन्मा और वियोग होने पर मैं मरा, ऐसा मान लिया। पूरी दुनिया का निर्णय करने वाला यह सयाना स्वयं के बारे में कभी सोचने के लिए भी राजी नहीं है। पूरी दुनिया का निर्णय तो यही जीव कर रहा है, ठीक है ठीक है, कुछ अच्छा है बुरा है, ये सारे न्यूज आते हैं या अन्य जो सारे दुनिया में कुछ चल रहा है वो सारा कौन जान रहा है? पुद्गल जान रहे के जीव। इतनी इन्वेंशन होती है नई नई, कंप्यूटर खुद नहीं जानता कुछ, वो सारा कौन जानता है? जीव जानता है ना, परंतु वो अपने बारे में कुछ नहीं जानता। तो जो स्वयं को नहीं जानता और पूरी दुनिया को जानता है ऐसा मानता है, उसका जानना सही होगा कि नहीं होगा? तू कौन है मालूम नहीं, ऐसा कहेगा? ये क्या, ये शरीर है ना, ये मैं, ऐसा ही मानेगा। यानी उसका यहाँ से अज्ञान चालू हो गया और मानता क्या है, ये पूरी दुनिया को मैं जानता। शरीर की उपस्थिति में भी जानने का कार्य तो जीव स्वयं ही करता है। इंद्रियां तो अचेतन पुद्गल है, ये जो बाह्य हमें जो दिखती है ना, द्रव्येंद्रियां जिसको कहते हैं, जो पुद्गल की रचना है, वो स्वयं पुद्गल है, अचेतन है। परंतु जानने के काल में उनकी निमित्त रूप से उपस्थिति रहती है। जब वर्ण को जानता है जीव, तब वहाँ आँखों का निमित्त रूप से उपस्थिति है, प्रेजेंस है, बस इतना ही। वो खुद कुछ नहीं, जानने में हेल्प नहीं करती है। जीव स्वयं जानता है, तब वहाँ आँखें भी उपस्थित है। तब सूक्ष्म अवस्था में केवल ज्ञानी के लिए वो आँखों से नहीं देखते जानते, वो आत्म प्रवेशों से सारा ही देख जान लेते। वो आंखें तो उनके ऐसे अंदर लगी हुई है, फिर भी सारी दुनिया देख लेते। इंद्रिय मन वचन काय श्वासोच्छ्वास आदि के कार्य को द्रव्य प्राण कहते हैं। अभी देखो हमारा जो विषय है ना प्राण का, पहले तो हमने देखा कि जीव को जानने देखने का जो उसका व्यापार हमेशा चलता है, उसको भाव प्राण कहते हैं, चेतना को ही भाव प्राण का। अब जब जब जीव जानता है या अन्य जो कुछ कार्य होते हैं उसके, देखो इंद्रिय है, इंद्रियों के द्वारा जानना, मन है, वचन है, काय है और श्वासोच्छ्वास है, उनके जो कार्य है, अकेले शरीर को प्राण नहीं कहा, शरीर का कार्य हो रहा है ना जीव के द्वारा। पहले हमने देखा था उसके उसमें ये सारे पर्याप्त यानी शक्ति तैयार हुई, अब उसके द्वारा वो कार्य रूप परिणाम होगा या कार्य करेगा, उस कार्य को यानी किस किस के कार्य को, इंद्रिय मन वचन काय यानी शरीर और श्वासोच्छ्वास आदि के कार्य को द्रव्य प्राण कहते हैं। द्रव्य प्राण कितने हैं और किस जीव को कितने प्राण होते हैं, इसकी चर्चा अब हम करेंगे। देखो अभी हम प्राण के नाम गिनाएंगे, पहले उसको एकदम इजी है 10 नाम, परंतु उसमें हमने शॉर्ट में करेंगे तो सारा ख्याल में आएगा। देखो कुल 10 प्राण हैं, उनमें 4 प्रकार के प्राण हैं। टोटल कितने हैं? 10, मगर उसमें प्रकार कितने हैं, ग्रुप कितने हो गए? 4। तो पहला है इंद्रिय प्राण, बोलो सब। दूसरा है बल प्राण, श्वासोच्छ्वास प्राण और आयु प्राण, कितने हुए? 4 हुए। अभी हमने देखे थे पंचेंद्रियों को कितनी इंद्रियां होती है, तो पंचेंद्रिय जीवों को इंद्रिय प्राण कितने होंगे? 5, बराबर। श्वासोच्छ्वास प्राण कितने होंगे? 1। आयु प्राण कितने होंगे? 1। 5 इंद्रिय प्राण, 1 श्वासोच्छ्वास, 1 आयु, कितने हो गए? 7 हो गए ना। अब बल प्राण, बल प्राण 3 होते हैं, एक काय बल, एक वचन बल और एक मनोबल। बल शब्द आगे लगाना जरूरी है, अकेला मनोवचन काय नहीं कह देना। काय बल प्राण, वचन बल प्राण और मनोबल प्राण। इंद्रिय प्राण कितने हुए, कौन कौन से, बोलो दीपाली। और कर्णेन्द्रिय, और हर एक के आगे प्राण शब्द लगा देना, स्पर्शन इंद्रिय प्राण ऐसा बोल, क्या ये 5 इंद्रिय प्राण, ये 5 इंद्रिय प्राण हुए। बल प्राण कितने हैं सिद्धार्थ, कौन से बोलो। पहले काय बल ले, देखो क्योंकि काय तो सभी को होता है, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक। फिर वचन कहाँ से कहाँ तक होता है, 2 इंद्रिय से लेकर, इसलिए फिर वचन के वचन का नाम लेना, और फिर बाद में मन जो सन्नी को होता है। तो काय बल प्राण, वचन बल प्राण और मन बल प्राण, क्योंकि आगे जब हम गिनाएंगे कौन से जीव को कितने प्राण हैं, तो ये आपको काम में आएगा, तो इसी ऑर्डर से आप उसको याद कर लेना। देखो इन सभी प्रभेद मिलाकर 10 प्राण होते हैं। तीसरी रंग वे इस प्रकार है, 5 इंद्रिय प्राण स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु श्रोत्र इंद्रिय प्राण है, सारों को इंद्रिय प्राण ऐसे आगे लगा ले। 3 बल प्राण है, काय बल वचन बल और मन बल, ये सारे बल प्राण है। 1 श्वासोश्वास प्राण है और 1 आयु प्राण। इस प्रकार 10 प्रकार का कार्य यानी व्यापार द्रव्य प्राण है और इंद्रियावरण के क्षोभ संघ से होने वाली चैतन्य परिणति भाव प्राण है। ये 10 तो द्रव्य प्राण है, जब द्रव्य प्राण है तब भाव प्राण भी है ना, हमने तो देखा था भाव प्राण से रहित कभी जीव होता ही नहीं है। तो अभी जो हमारी चैतन्य परिणति कैसी हो रही है तो क्षयोपशम रूप हो रही है। अभी क्षयिक ज्ञान तो है नहीं अपने पास, तो क्षयोपशम रूप ज्ञान की परिणति हो रही है अपनी। तो इंद्रियावरण यानी अभी कितने इंद्रिय है हमारे, 5 इंद्रिय, तो हमारे तो 500 इंद्रियों का आवरण का क्षयोपशम है। एक इंद्रिय जीवों को कितना है क्षयोपशम, खाली एक स्पर्शन इंद्रिय द्वारा जानने इतना ही सूक्ष्म है, बाकी उनका जो अन्य जो इंद्रिया है उसके ऊपर आवरण है ढके हुए। इंद्रियों के 500 इंद्रियों के द्वारा जानने रूप जो शक्ति है वो उस आवरित है, ढकी हुई है, और खाली एक स्पर्शन इंद्रिय का ज्ञान उनका खुला है। 2 इंद्रिय वालों का, 1 इंद्रिय वालों का एक ही ज्ञान खुला, 2 इंद्रिय वालों का 2 इंद्रिय द्वारा जानने का ज्ञान खुला है, बाकी ढका हुआ है, आवरण है उसके ऊपर। 3 इंद्रिय वाला का क्षोभ कितना है, 3 इंद्रिय के द्वारा जान सके इतना उनका ज्ञान का उभार है, बाकी का ज्ञान उनका ढक गया है, इसके ऊपर आवरण है, इसको कहते ज्ञानावरण, क्षोभ ज्ञान है ना उनका, उतना ही है। 4 इंद्रिय वालों का, 4 इंद्रिय द्वारा जान सके इतना ही ज्ञान है उनका, और उतनी इंद्रिया भी है वैसी उनकी। और 5 इंद्रिय वाला 500 इंद्रियों के द्वारा जान सके, उसमें भी असंग है, उनके मन नहीं है, संग वालों को मन भी है, तो उनका ज्ञान का क्षोभ उतना अधिक है, ज्ञान का उभार उतना अधिक है। देखो द्रव्य प्राण के उत्पन्न होने को हम जन्म और उसके नाश को हम मरण कहते हैं। संग पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों के 10 प्राण होते हैं। अब 10 प्राण कौन कौन से होंगे, हाँ चित्रा जी बराबर, हाँ और एक आयु बराबर, बहुत अच्छी, वो सारे प्राण, ये सारे द्रव्य प्राण है। अभी तो हम प्राणों की ही चर्चा कर रहे हैं। अब ये पर्याप्तों की बात हो गई। अब अपर्याप्त अवस्था में हमने देखा था ना, अपर्याप्तों में तो उनकी तो शक्ति अभी नहीं डेवलप हुई, तो उसका कार्य होगा क्या, अपर्याप्त यानी जिसकी शक्ति पूरी नहीं हुई, जिसकी श्वासोश्वास की शक्ति नहीं पूरी हुई वो श्वासोश्वास नहीं ले सकता, इसलिए वहाँ श्वासोश्वास प्राण नहीं होगा बराबर। अब वचन की शक्ति भाषा की शक्ति नहीं हुई तो वहाँ वचन भी नहीं बोल सकेगा, तो वो वचन बल भी नहीं होगा उनको अपर्याप्त अवस्था। मन का भी बल वहाँ नहीं होगा, मन द्वारा वो जानने का कार्य भी नहीं होगा, इसलिए वो मन बल भी नहीं वहाँ नहीं होगा। तो अपर्याप्त अवस्था में देखो श्वासोश्वास प्राण वचन बल प्राण और मन बल प्राण नहीं होता, इसलिए संगी पंचेंद्रिय के अपर्याप्त अवस्था में प्राण कितने होंगे, 10 में से 3 नहीं होंगे तो कितने होंगे, हाँ बोलो 7 बराबर। क्या क्या नहीं है उनके, श्वासोश्वास नहीं है, वचन बल नहीं है और मन बल नहीं है। क्या क्या है 7 में, क्या क्या है बोलिए आप, 7 प्राण कौन कौन से होंगे संधि पंचेंद्रिय के अपर्याप्त के, वहाँ इंद्रिय प्राण है और क्या है? हाँ बोलो सिद्धार्थ। काय बल प्राण का है, पांच इंद्रिय प्राण, आप कहोगे वहाँ भी इंद्रियों के द्वारा जानना नहीं हो रहा है अपर्याप्त अवस्था में, परंतु वहाँ शक्ति रूप इंद्रिया बनी रहती है, इसलिए वहाँ वो प्राण भी है। पांच एक काय बल प्राण और आयु, देखो एक समय मात्र भी आयु का उदय नहीं, ऐसा कभी होगा ही नहीं। अभी मनुष्यायु चल रही है, अभी कोई जीव मरा, मनुष्य मरा, और फिर अभी विग्रह गति में जाने के लिए तीन समय या चार समय उसको लग रहे, फिर भी वहाँ उसका आयु चालू हो जाती है, देवायु उसकी चालू हो गई। यानी कभी ऐसे बीच में कोई गैप नहीं होगा, एक घंटे के लिए कोई आयु ही नहीं, ऐसे भटक रहा है, ढूंढ रहा है इधर उधर कहाँ जाए, दरवाजा छटका रहे, चलो एंट्री दे दो कहीं तो स्वर्ग में या नरक में, ऐसा कभी नहीं होता। जगह नहीं है फिर वापस लौटा तो नहीं, अन्यमति में ऐसी आती है, वो अनुसया गई ऊपर स्वर्ग में, अरे तेरे को पुत्र नहीं जा, तेरे को ये दरवाजा खुला नहीं, स्वर्ग का नीचे जाओ और जो मिले उसको शादी करो, ये ऐसी कुछ न कुछ मनगढ़ंत कहानियां होती है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। पूरी नहीं, आयु है ना, आयु प्राण है, और उस जीव में वो उस इंद्रिया की जानने की ज्ञान का तो है ना, वहाँ उतनी ज्ञान का उघाड़ है उसका, अभी वो जानने रूप उसका कार्य नहीं बन रहा, परंतु इंद्रिय प्राण वहाँ है। देखो यहाँ चार बनाया है, दिख रहा है सबको कि नहीं? पहले फर्स्ट लाइन में तो सारे प्राणों के नाम दिखे, इंद्रिय प्राण एक ये शॉर्ट में दिखा है, पर्सन कर्शन इंद्रिय प्राण रखने देने खाली ग्रह ऐसे लिखा है, जो और गो यानी करने इंद्रिय, ये पांच इंद्रिय प्राण हो जाएगा। फिर तीन बल प्राण लिखे, काय बल, वचन बल और मन बल, उसके नीचे श्वासोश्वास प्राण और अंत में आयु प्राण। अभी सबसे पहले जो कॉलम है उसमें सबसे ऊपर लिखा है पंचेंद्रिय संगी, पं सम लिखा है ना, उसके दो भेद किए, पर्याप्त और अपर्याप्त, और पर्याप्त उनके कितने के सामने टिक मार्क किया है, सब दस के दस प्राण है। अभी अपर्याप्त में देखो, अपर्याप्त में सारे इंद्रिय प्राण है कि नहीं है? है। अब तीन बल प्राण में से कितने के ऊपर टिक मार्क है, काय बल यानी उनको वचन बल और मन बल नहीं है, बराबर, यानी पांच इंद्रिय प्राण हुए, एक काय बल, कितने हुए, छह हुए। श्वासोश्वास है कि नहीं है, अपर्याप्त में श्वासोश्वास नहीं है तो वो गया, और फिर आयु है कि नहीं है, आयु है तो कितने हुए, गिनो, सात हुए। तो संधि पंचेंद्रियों को पर्याप्त अवस्था में दस प्राण होते हैं और अपर्याप्त अवस्था में सात प्राण होते हैं। उसमें नहीं, क्योंकि वो पर्याप्ति कब शुरू हो जाती है, जीव मर कर कहीं पहुंच गया वहाँ, उसके लिए उसके लिए वो पर्याप्ति कारण है। अब आयु के लिए कोई पर्याप्ति कारण नहीं है, क्योंकि वो विग्रह गति में भी चल रहा है ना, उसका आयु चालू हो गई। हाँ, और पर्याप्ति कब चालू हो जाएगी, वहाँ पहुंच जाएगा वो, हाँ वो बीच में दो तीन समय के लिए उसको पर्याप्ति है, वहाँ नहीं है, आयु का तो चलता है, आयु चालू हो जाती है। संधि पंचेंद्रिय का ख्याल में आया दीपाली? अच्छा, अपर्याप्त यानी क्या, कल हमने देखा था एक भी पूरी नहीं होती, वो प्राण यानी जानने रूप शक्ति है वहाँ, वो शक्ति रूप प्राण लेना वहाँ। अभी अपर्याप्त में काय बल है कि नहीं, वहाँ उसमें परमाणु तो ग्रहण चल पहले ही समय से चालू हो जाता है, उसका पर्याप्ति भी चालू हो जाती है उसकी, शक्ति भी चालू हो जाती है और वहाँ परमाणु भी वो ग्रहण करता है, हार लिया ना उसने, उसको सॉलिड लिक्विड बनाने की शक्ति तैयार होना वो पर्याप्त केला, और फिर शरीर की रचना होना आदि आदि सारे आगे चलता, वो हुआ कार्य। इसलिए उनमें बाकी श्वासोश्वास वगैरह कुछ नहीं है, वचन बल भी नहीं है, मन बल भी नहीं है, काय बल है, और इंद्रिय प्राण जो कहे इंद्रियों के द्वारा जानने रूप नहीं हो रहा है कार्य, क्योंकि अभी इंद्रिया बनी नहीं है, द्रवेंद्रिया बनी नहीं है, परंतु भावेंद्रिया है ना, इसे पांचों इंद्रियों के द्वारा जानने रूप शक्ति वहाँ है, तो इसलिए इंद्रिय प्राण है। नहीं नहीं वो वहाँ शरीर की रचना चल रहा ही था, आहार पर्याप्ति चालू हो गई ना उसकी, हाँ शरीर पर्याप्ति अभी वो सारी चालू तो हो ही गई है, अभी पूर्णता नहीं हुई ना उनकी, अपर्याप्त हाँ हाँ टेबल पढ़ देते सारों के संगनी पंजी एक देखे सारे के सारे कट 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 गिना देते, 10, 7, 9, 7 तो फिर 8, 6, 7, 5 ऐसे ऐसे सारा गिना देते। अभी हम जाएंगे उसके पर। अब चार इंद्रिय वाला जीव, चार इंद्रिय वाले जीवों के इंद्रिया इंद्रिय प्राण कितने हैं बोलो, कितनी इंद्रिया है, चार, चतुर इंद्रिय कहते ना, तो चार इंद्रिय वाला जीव है, तो चार इंद्रिय प्राण है उसके पास, कौन सा इंद्रिय प्राण नहीं है उसको, हाँ बेटा कर्णेन्द्रिय प्राण नहीं है, और तीन बल प्राण में से हाँ काय काय बल और वचन बल है, मन बल नहीं है, क्यों, क्योंकि एक इंद्रिय से असैनिक पंचेन्द्रिय तक मन ही नहीं होता, इसलिए मन बल प्राण निकल गया। श्वासोच्छ्वास होगा कि नहीं होगा, पर्याप्त है ना, तो होगा, और आयु है, अब कितने प्राण हो गए गिनो, चार इंद्रिय प्राण, काय बल, वचन बल, श्वासोच्छ्वास और आयु, कितने हुए, 8। अब अपर्याप्त का कौन गिनाएगा, सिद्धार्थ आप गिनो, चार इंद्रिय प्राण, काय बल प्राण, आयु प्राण, कितने हुए, 6, यानी 8, 6, पर्याप्त में 8 और पर्याप्त में 6, उसको ऐसा यानी बाहर करने की जरूरत नहीं, समझो खाली, क्यों ऐसा ये समझ लो ना तो अपने आप हो जाएगा। चार इंद्रिय की बात समझ में आ गई, और पर्याप्त की 6 है उसमें, अब तीन इंद्रिय वाला कौन बोलेगा, हाँ आप बोलिए, तीन इंद्रिय में इंद्रिय प्राण 3 है, हाँ फिर हाँ यहाँ देख के बोलिए आप, 3, अच्छा हाँ क्रम से आप लेंगे ना तो ज्यादा, हाँ बल प्राण में कितने हैं उसके बल, हाँ काय बल प्राण, हाँ हाँ श्वासोश्वास कितने हुए, 7 हो गए, आपने 7 गिनाए हैं, देखो ऐसा लेना, 10 किसके थे, संगनी पंचेन्द्रिय के 10 थे, असंगनी के 9, चार इंद्रिय वाले के 8, तीन इंद्रिय वाले के 7, एक इंद्रिय वाले के, दो इंद्रिय वाले के कितने हो गए, दो इंद्रिय वाले के, देखो क्रम से गिनाओ, अभी आपने 3 इंद्रिय की बात की, 3 इंद्रिय की आप फिर बोलो सिद्धार्थ, 3 इंद्रिय वाले के पर्याप्त, हाँ 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 और आयु 7 हुए, चित्रा जी आप अपर्याप्त के गिनाओ, 3 इंद्रिय अपर्याप्त देख सकते आप, हाँ इंद्रिय प्राण, हाँ अपर्याप्त चल रहा है। हाँ हाँ हाँ, श्वासोश्वास होगा कि नहीं, हाँ तो क्या होगा, आयु होगी कि आयु, हाँ तो कितने हुए, 5 हो गए, यानी 7 और 5, पर्याप्त में 7 और अपर्याप्त में 5, दो दो का डिफरेंस है। पहले संधि में कितने का डिफरेंस है, 3 का, 10 7, फिर असंधि में 9 7, फिर 4 इंद्रिय में 8 6, और 3 इंद्रिय में 7 5। अभी 2 इंद्रिय में गिनाओ, कौन गिनाएगा, आप गिनाओगे, हाँ मंदा भी, हाँ तो इंद्रिय प्राण हुए, काय बल प्राण, पर्याप्त, वचन बल प्राण, बराबर, श्वासोश्वास और आयु, तो 2 इंद्रिय वाले में कितने हुए, 2 इंद्रिय प्राण, काय बल प्राण, वचन बल प्राण, श्वासोश्वास और आयु, 6 हो गए ना, तो अभी 2 इंद्रिय अपर्याप्त गिनाओ दीपाली, 2 इंद्रिय प्राण, काय बल होगा, हाँ आयु कितने हुए, 4, यानी 6 और 4, 2 इंद्रिय वाले में कितने हुए, 4 कैसे निकाले समझे ना, 2 इंद्रिय प्राण, 1 काय बल प्राण और 1 आयु प्राण। अब 1 इंद्रिय को कौन गिनाएगा, हाँ गिनाओ सीधा, 1 इंद्रिय प्राण बराबर, हाँ कितने हुए, 4 हुए, वेरी गुड, और अपर्याप्त में 1 इंद्रिय प्राण, हाँ आयु, यानी 3 हो गए, कल में है ना बराबर, क्यों आसान है, दिमाग ही लगाना है, अभी इंद्रवेन के लिए केवली भगवान को कितने प्राण हो गए, 13वां गुणस्था, हाँ पाटने जी, हाँ हाँ 13वें गुणस्थान, 13वें गुणस्थान वाले नंदाबेन, कोई कहना चाहता है, हाँ पाटनी जी, पाटनी जी को तो पूछा है मैंने, हाँ केवली भगवान कौन से इंद्रिय के द्वारा जानते हैं, द्रव्येंद्रिय प्राण नहीं कहलाती, इंद्रियों द्वारा जो जानने रूप कार्य रूप प्राण ही पूछा मैंने, द्रव्य प्राण कितने हैं उसके, देखो उनको दिव्य ध्वनि है कि नहीं है, तो काय बल है, वचन बल है, श्वासोश्वास है और आयु है, ये 4 प्राण है, इसलिए मैंने इंदुवेन और जयवेन को ही पूछा क्योंकि उनका ये विषय हुआ था अपना, इसलिए हाँ नहीं बराबर है, वो इंद्रियों के द्वारा उनका चैतन्य व्यापार नहीं चलता, क्यों नहीं चलता, इंद्रियों के द्वारा कौन जानते हैं, हाँ चित्रा भी, यानी ये जो मतिशुदा उदी वाले ये सारे जो सूक्ष्म ज्ञान वाले हैं, यानी केवल ज्ञान ही साइक ज्ञान वाले हैं, वो इंद्रिय ज्ञान उनको नहीं है, बराबर। तो इंद्रियों के द्वारा जानना ये प्राण है, ये ख्याल में लेना। खाली द्रव्य इंद्रियों नहीं, फिर आप खाली शरीर की इंद्रिया गिनोगे तो ये तो डेड बॉडी को भी होती है। हाँ, वो उसमें तो और भी आयु है कायवल, वो क्या है लास्ट में जब वो सूक्ष्म क्रियापति पाती वगैरह होता है ना, एकदम तेरे गुणस्थान के अंत में वो श्वास भी रोक देते हैं और वचन भी उनका रुक जाता है, तब उनके दो प्राण होते हैं। मन नहीं, क्योंकि मन के द्वारा जानते नहीं ना भाई, वो सारा क्षायिक ज्ञान है उनका। हाँ, द्रव्यमन है, जैसे शरीर है वैसे द्रव्यमन है। अब चौदहवे गुणस्थान में, अब ये भी बात आपके लिए नहीं, फिर भी सुन के रखो। हाँ, अभी मैंने क्या बोला, तेरहवे गुणस्थान के अंत में श्वास रोक देते हैं, अकेली आयु है वहाँ, शरीर है मगर काय बल नहीं है, अयोगी हो गए ना, कोई क्रिया नहीं है वहाँ काय की, सूक्ष्म क्रिया हो गई वो बाद में, वो तो तेरहवे के अंत में हो गई, ये काय का सारा व्यापार रुक जाता है उनका, ये अकेले आयु प्राण है, अयोगी हो गए। ये तो बहुत अगली बात है, फिर भी इंटरेस्ट आपको पैदा हो इसलिए मैंने ये विषय निकाला। इसे आप तो तभी तो बोलती थी बराबर, अभी वो भी बहुत गैप पड़ गया। देखो ये अपना विषय यहाँ चला, देखो 134 पेज नीचे, अब ये पढ़ेंगे तो आसानी से आपको ख्याल में आएगा। असंग पंचेंद्रियों के पर्याप्त अवस्था में एक मनोबल प्राण छोड़कर 9 प्राण होते हैं, अभी हमने देखा था ना सारे कैसे कैसे होते हैं हरेक को। अपर्याप्त अवस्था में वचन बल प्राण और श्वासोच्छ्वास प्राण बिना 7 प्राण होते हैं, ये पहले ख्याल में आता है। अभी अपर्याप्त में क्या नहीं होता है, क्यों नहीं होता। चतुरिंद्रिय पर्याप्तों के एक श्रोत्रेंद्रिय प्राण और मनोबल प्राण बिना 8 और अपर्याप्तों के 6 प्राण होते हैं। बारिश है आपके पास, आके बंद कर दीजिए। हाँ, त्रिइंद्रिय पर्याप्तों के और एक चक्षु इंद्रिय प्राण बिना 7 प्राण और अपर्याप्तों के 5 प्राण होते हैं। द्विइंद्रिय पर्याप्तों में और एक ग्रहण इंद्रिय प्राण बिना 6 प्राण और अपर्याप्तों के 4 प्राण होते हैं। हमने देखा था ना 10-7 संधि पंचेंद्रिय, असंधि में 9-7, फिर 4 इंद्रिय में 8-6, फिर 3 इंद्रिय में 7-5 और द्वि इंद्रिय में 6-4 और एक इंद्रिय में एकदम वचन और एक इंद्रिय दोनों कम हो जाते, इसलिए 4 और 16 ऐसा होता है। एक इंद्रियों के पर्याप्तों के स्पर्शन इंद्रिय प्राण, काय बल प्राण, श्वासोश्वास प्राण और आयु प्राण कुल मिलाकर 4 ही प्राण होते हैं, उनके वचन बल प्राण नहीं होता। एक इंद्रियों के अपर्याप्तों के श्वासोश्वास प्राण बिना 3 ही प्राण होते हैं। 13वें संयोग के लिए गुणस्थान में ज्ञान क्षायिक होता है, लिखा ना ये भी यहाँ लिया है, इसलिए वहाँ क्षायोक्षमिक ज्ञान रूप द्रव्येन्द्रिय प्राण और मनोबल प्राण नहीं होते। इसका कारण क्या है वो ख्याल में लेना है। इन जीवों के काय बल प्राण, वचन बल प्राण, श्वासोच्छ्वास प्राण और आयु प्राण 4 ही प्राण होते हैं। आगे चलकर इसी 13वें गुणस्थान में वचन बल का अभाव होने पर 3 प्राण और आखिर में श्वासोच्छ्वास का अभाव होने पर दो ही प्राण रहते हैं, वचन भी रुक जाता है उनका वचन योग। अयोगी सहयोगी में ही, सहयोगी में ही तेरहवे के अंत तक, और हरेक को ये वचन योग है भी नहीं, बाकी किसी को तो वो भी नहीं है, उसके अंत में वचन योग रुक जाता है, बाद में श्वासोच्छ्वास भी रुक जाता है और शरीर की कोई क्रिया नहीं होगी, जिसको सूक्ष्म क्रिया कहते हैं ना, सूक्ष्म क्रिया होगी और बाद में वो क्रिया भी मिट जाएगी, क्रिया रहित हो जाएगा और फिर वो चौदहवा गुणस्थान अयोगी आ जाएगा। चौदहवें अयोग केवली गुणस्थान में एकमात्र आयु प्राण होता है, वहाँ काय बल प्राण नहीं है, शरीर तो है अभी परंतु शरीर की कोई क्रिया नहीं है वहाँ, तो काय बल प्राण नहीं है। इस प्रकार संसारी जीवों के द्रव्य प्राण संभवते हैं। सिद्धों के कौन सा द्रव्य प्राण होगा? तो प्राण रहित होंगे कि भाव प्राण रहेगा? भाव प्राण रहेगा। हाँ, सिद्ध भगवान तो भाव प्राणों से युक्त अनंत काल तक जीते रहते हैं। हम सब जीव भी भाव प्राणों से युक्त है कि हम सिद्ध बनने के बाद भाव प्राण आएंगे, अभी है। इसलिए द्रव्य प्राणों के नाश को अपना नाश मानकर व्यर्थ शोक करना योग्य नहीं है। हम डरते ना, अरे अपना नाश हो जाएगा, हमारे प्राण हर जाएंगे, तो काहे को ऐसा करना, क्योंकि हम तो हमेशा अनंत काल तक भाव प्राणों से हमेशा बने रहेंगे, मरण हमारा कभी होगा ही नहीं। देखो यहाँ से मैं यहाँ से निकल जाऊँ तो अन्य गति प्राप्त कर दो, तो मुझे रोना आएगा? किसको रोना आएगा? तो जो यहाँ बच्चे रहेंगे वो रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? खाली पीली रो रहे, क्यों? तो कोई इष्ट था तो रो रहे, कोई अनिष्ट था तो चलो अच्छा हुआ, मगर अभी दुनिया को दिखाने वाले के लिए उसके तो रोना पड़ेगा। ये इसी दुनियादारी चलती है। द्रवेंद्रिया तो कुछ जानती नहीं है। देखो यहाँ बात आ गई, भावेंद्रिया यानी सूक्ष्म ज्ञान का जो उघाड़ है वह भी जीव का अपना है। वो ज्ञान का उघाड़ कर्म ने नहीं कराया, जितना भी ज्ञान मौजूद है वो जीव का अपना है। अभी हमारा सूक्ष्म ज्ञान है, केवल ज्ञान तो है ही नहीं है, अभी जितना भी ज्ञान ये पर्याय में प्रकट है वो कर्म ने कराया है कि वो अपना है? अपना है ना, आपको नहीं समझा? अभी जितना ज्ञान प्रकट है वो ज्ञान की पर्याय है, वो अपनी शक्ति है कि कर्म की शक्ति है? अपनी है ना, क्योंकि ज्ञान जीव का स्वभाव है। अभी पूरा प्रकट नहीं है इसलिए उसमें निमित्त रूप से कर्म का आवरण है, मगर जितना प्रकट है, अभी जितना ये प्रकाश दिख रहा है वो मेघों का है कि सूर्य का है? हाँ बोलो आप। ये जो प्रकाश आ रहा है अभी हमें दिख रहा है ना, ये सूर्य का प्रकाश है कि मेघ का है? सूर्य का, और मेघों का ऊपर अभी पटल आ गया बीच में, पूरा सूर्य प्रकाश नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए था, जितना गर्मी के दिनों में आता है। तो जितना अप्रकट है उसमें तो ये मेघ निमित्त है, परंतु जो प्रकाश आ रहा है, जो प्रकाश है वो किसका है? वो सूरज का ही है, वो मेघों का प्रकाश नहीं है। ख्याल नहीं आया अभी? आ गया ना। वैसे अभी हमारा जितना ज्ञान का उघाड़ है, जिसको हम सूक्ष्म ज्ञान कहते हैं, वो हमारा अपना है, वो कर्मों में बनाया हुआ नहीं है, आवरण कर्मों के निमित्त से। हमारा स्वभाव तो केवल ज्ञान है, मगर पूरा ज्ञान अभी पूरा ज्ञान अभी प्रकट नहीं, तो उसमें निमित्त है कर्म का, उसमें निमित्त ले लो, जो अप्रकट है उसमें निमित्त ले लो, मगर प्रकट है वो किसका है? वो हमारा है। हाँ, देखो क्या कहते हैं, भावेंद्रिय यानी सूक्ष्म ज्ञान का जो उघाड़ है वह भी जीव का अपना है, वह उसकी स्वयं सिद्ध शक्ति है। कर्म ने ज्ञान को उत्पन्न नहीं किया, निगोद में भी जो ज्ञान है वो उस जीव का अपना है, किसी अन्य ने वो ज्ञान को उत्पन्न नहीं किया, ज्ञान को अन्य कोई उत्पन्न करा ही नहीं सकता। ये हमारा जो जानना 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 चल रहा है वो हमारी अपनी शक्ति है, हम अपनी शक्ति से जान रहे हैं, सामने ये चीज है इसलिए जान रहे, ऐसा भी नहीं है। ख्याल है, कभी कभी सामने पड़ा है कुछ है, वहाँ डोरी पड़ी है, डोर पड़ा है, हम उसको साफ मान बैठते। तो जानने का जो कार्य है वो हमारा अपना कार्य है, वो हमारी अपनी निज शक्ति है और वो अपने से ही हो रही है, किसी निमित्त से हमारा ज्ञान नहीं हो रहा। कर्म के कारण हमको ज्ञान नहीं होता है, सामने पदार्थ है इसलिए ज्ञान नहीं होता है, प्रकाश है इसलिए ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान तो ज्ञान का अपना स्वयं का स्वभाव है, वो अपने से हो रहा है। ये मूलभूत सिद्धांत है जैनिज्म का। इतनी स्वतंत्रता समझनी ही चाहिए कि हर एक गुण का जो कार्य है वो उसकी निज शक्ति है, वहाँ निमित्त होंगे जो कुछ होने वाले हो तो, और उन निमित्तों के कारण कोई भी कार्य नहीं होता। हमने निमित्त उपादान में सीखा है, प्रत्येक कार्य उस द्रव्य का उसके गुण में उसकी स्वयं की उस समय की पर्याय की योग्यता से होता है। कोई भी पर्याय अपने एक एक द्रव्य की पर्याय अन्य द्रव्य के कारण नहीं होती है। बिल्कुल इस पर जितना आपका दृढ़ विश्वास होगा उतना आप इसमें तत्व ज्ञान में आगे बढ़ सकते। थोड़ी भी पराधीन वृत्ति होगी तो ज्ञान अपने आप को पकड़ेगा नहीं, हमेशा वो किसी पर चीज की ओर, निमित्त की ओर या अन्य अन्य कर्मों की ओर ताकते रहेगा। तो कि उसको शक्ति की उसको एहसास ही नहीं होगा कि ये तो मेरी शक्ति है। यदि स्व की महिमा आए तो ही वो स्व की तरफ देखेगा, क्योंकि ज्ञान का ऐसा स्वभाव है कि जहाँ उसको कुछ अधिक लगता है, महिमा लगती है, वहाँ दौड़ता है। अब बाहर से कोई बाजे बजने लगे तो बच्चे क्यों जोर दौड़ते हैं, वहाँ कुछ अधिक महिमा भाषित होती है ना, हरी क्या है देखो तो सही। जब अपना आत्मा सर्वोत्कृष्ट लगेगा पूरी दुनिया से तब ज्ञान वहाँ दौड़ जाएगा। तो उसको ऐसा नहीं करना पड़े चलो अभी उपयोग को बाहर से खींचो अंदर ले चलो, ऐसे कोई वहाँ कसरत लड़ाई नहीं करनी है। अपनी महिमा जब आएगी और जब पता चलेगा कि ये ज्ञान की निज शक्ति है, ये हरेक अभी जो ज्ञान हो रहा है हमें, अभी हम जो इसके बारे में प्राणों के बारे में पढ़ रहे हैं, ये जो ज्ञान हो रहा है वो हमारी निज शक्ति है, वहाँ से ये ज्ञान प्रकट हुआ है, पुस्तक में से या किसी उपदेश में से हमें ज्ञान नहीं हो रहा। ज्ञान की शक्ति अपने में से ये पर्याय प्रकट हो रही, तब सामने कोई उचित निमित्त होते हैं बस, मगर उसमें से ज्ञान नहीं आता। फिर पड़ती भावेंद्र ने सूक्ष्म ज्ञान का जो उघाड़ है वह भी जीव का अपना है, वह उसकी स्वयं सिद्ध शक्ति है। कर्म ने ज्ञान को उत्पन्न नहीं किया, जीव की स्वयं की योग्यता के अनुसार पर्याय में ज्ञान की हीनाधिकता होती है और उसी समय कर्म में ज्ञानावरण और वीर्यांतराय का क्षोक्षम विद्यमान रहता है, परंतु जीव ने अपना ज्ञान कर्म के क्षोक्षम से ही होता है मान लिया। आज से क्या भूल की उसने कर्म का जितना क्षोक्षम उतना मुझे ज्ञान होगा इसे उसने माना, परंतु वो ज्ञान मेरा अपना है ऐसा नहीं माना। जीव की जितनी भावेंद्रिया होती है उतने इंद्रिय प्राण होते हैं, ये भावेंद्रिया ली, इसलिए वो अपर्याप्त अवस्था में भी भावेंद्रिया को गिना यहाँ। पंचेंद्रियों के 5 इंद्रिय प्राण होते हैं, इसलिए अंध बधिर मनुष्य भी पंचेंद्रिय जीव ही है, ऐसा नहीं मानना कि उनको एक इंद्रिय कम है। पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्था में जीवों के इंद्रिय प्राण समान होते हैं, हमने गिनाए है, पर्याप्त में भी इंद्रिय प्राण गिनाए उतने ही और अपर्याप्त में भी उतने गिनाए। बल प्राणों में से काय बल प्राण एकेंद्रियों से पंचेंद्रियों तक सबके होता है, वचन बल प्राण द्विंद्रियों से संधि पंचेंद्रियों तक सभी जीवों के होता है, परंतु मन बल प्राण मात्र संगी पंचेंद्रियों के ही होता है और पर्याप्त अवस्था में द्विंद्रियादिकों के वचन बल प्राण और मन बल प्राण नहीं होते। अपर्याप्त अवस्था में काय बल प्राण होता है, ये सारा हमने देख लिया, अभी खाली उसको पढ़ रहे। आयु प्राण सभी जीवों में पाया जाता है, कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक, हाँ पहले से 14वें तक सारे ही जीवों में आयु प्राण पाया जाता है। और सिद्धों में, हाँ सिद्धों में नहीं है, ये सारे द्रव्य प्राणों की चर्चा चल रही। आयु प्राण सभी जीवों में पाया जाता है, इसमें आयु कर्म का उदय निमित्त है। श्वासोच्छ्वास प्राण सभी पर्याप्त जीवों में होता है, अपर्याप्त जीवों में नहीं होता। सभी प्राणियों को प्राण वायु की जरूरत होती है, इस बात का तो हमें पता है। बंद जख्म में पलने वाले एनरोबिक बैक्टीरिया यानी प्राण वायु बिना पलने वाले कीटाणु शायद अपर्याप्त जीव हो सकते हैं, है ना? ये खाली ऐसा अनुमान ही लगाया है। अन्य मत एकेंद्रियों को जीव नहीं मानते। आजकल वैज्ञानिकों ने सिद्ध करने पर वनस्पति में जीव है मानने के लिए लोग तैयार हो गए हैं। तुम पूछोगे अग्नि जीव है या नहीं, उसमें प्राण है या नहीं, अग्नि के इंद्रिय प्राण, काय बल प्राण और आयु प्राण के बारे में तो हम कुछ समझ नहीं सकते, परंतु जलती हुई मोमबत्ती कांच के पात्र में रखकर वह बंद करने पर मोमबत्ती बुझ जाती है, प्राण वायु के अभाव में अग्नि बुझ जाती है, इससे श्वासोश्वास प्राण सिद्ध होता है। प्राण वायु के बिना तो जल वायु और पृथ्वी भी मृत होते हैं, ये मृत घोषित करते ऑक्सीजन। हाँ वो श्वासोश्वास में तो वही होता है ना, वो उसका श्वास हो गया वो खुद अधर्म द्रव्य को फेरने में उसका स्वभाव है। वायु में भी सारे वायु है ना, उसमें प्राण वायु तो एक ही है, उसमें वायु में तो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और अन्य भी है ना। ये तो ये अनुमान से बच्चों को थोड़ा इसे इंस्टिगेट किया, ये तो कुछ शास्त्र की बातें तो नहीं है। हाँ ऐसे है ना, फिर वनस्पति खाते हैं, पानी पीते हैं, ये तो हो जाता है ना, पानी पीते हैं वनस्पति ये अनाज खाते हैं, तो वहाँ भी हो गए ना वो। हाँ तो इससे तो चले तुम पूछोगे पर्याप्ति और प्राण में क्या अंतर है, दोनों में इंद्रिय भाषा मन और श्वासोश्वास नाम समान है। अच्छा सवाल है, सुनो। पर्याप्ति तो जीव की शक्ति की पूर्णता को कहते हैं, ये हमने कल देखा था ना, उस शक्ति के अनुसार जो कार्य होता है उसे प्राण कहते हैं। पर्याप्ति कारण है, प्राण कार्य है, इन दोनों में कारण कार्य संबंध है। जैसे आत्मा के विवक्षित प्रदेशों में, विवक्षित यानी पर्टिकुलर, पर्टिकुलर प्रदेशों में पदार्थों को जानने रूप यानी वर्णादि ग्रहण रूप, ये आंखों की बात अभी चल रही है, वर्ण ग्रहण होता है ना यहाँ के आत्मा प्रदेशों के द्वारा, क्षयोक्षम रूप शक्ति की पूर्णता होना इंद्रिय पर्याप्ति है और इंद्रियों द्वारा पदार्थों को जानने रूप कार्य का होना इंद्रिय प्राण है। भाषा वर्गणा को वचन रूप परिणमित करने की शक्ति की पूर्णता होना भाषा पर्याप्ति है और जीव द्वारा भाषा वर्गणा को वचन रूप परिणमाने का जो व्यापार होता है, जो कार्य होता है, वह है वचन बल प्राण। इसी तरह मन और श्वासोच्छ्वास के बारे में भी समझ लेना। अब तुम्हारी समझ में ही आया ही होगा कि चैतन्य व्यापार जीव की निज शक्ति है, जीव उससे कभी जुदा यानी भिन्न नहीं हो सकता, वह तो जीव का लक्षण है, चेतना लक्षण है ना जीव का। फिर भी शरीर के संयोग वियोग को उपचार से यानी हम लौकिक व्यवहार के लिए जन्म मरण संज्ञा दी जाती है। जीव के ज्ञान के उघाड अनुसार वह कितनी इंद्रिय वाला जीव है कथन किया जाता है, प्राप्त पर्याय में कितने प्राण है यह कथन निमित्त का ज्ञान कराने के लिए किया हुआ कथन है। हम जब कहते हैं सब पंचेंद्रिय जीव है उसके इतने प्राण है, तो जीव ही है, वो पूरा का पूरा चेतना लक्षण वाला जीव है, परंतु अभी वर्तमान में उसके संयोग में कैसा शरीर है, उसका ज्ञान का उघार कितना है, यह बताने के लिए, ये सारा निमित्तों का ज्ञान कराने के लिए ये ऐसा कथन किया जाता है कि इस जीव के 10 प्राण है, ये इस जीव के 9 है, ये इसके 7 है, ऐसा एक इंद्रियों के 4 है, ऐसा निमित्तों का ज्ञान कराने के लिए ये कथन आता है। वहाँ भी जो जीव है वो पूरा जीव ही है ना, उसमें कुछ कमती नहीं है। जीव का स्वरूप निबोध का हो, पेड़ पौधों का हो या सिद्धों का हो, जीव तो जीव ही है, पूरा पूरा जीव है, उसमें कुछ कमी नहीं है। फिर भी कौन सी जीवों का ज्ञान का भी उगाड़ कितना है, उनके संयोग में शरीर कैसा है, उनके प्राण कितने हैं, उसकी इंद्रियां कितनी है, सारा वर्णन करते हैं। इससे वर्तमान वो किस पोजीशन में जीव है उसका ज्ञान हमें होता, इसके लिए सारा वर्णन आता है। इस प्रकार का व्यवहार कथन सुनने पर भी उपादान की दृष्टि कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए, यानी वो जीव का मूल स्वरूप कभी हमारे दृष्टि में से छूटना नहीं चाहिए। निमित्त का ज्ञान नहीं करेंगे तो ज्ञान अधूरा यानी अपूर्ण रहेगा, निमित्त होता ही नहीं ऐसा जानेंगे तो ज्ञान खोटा होगा, और निमित्त ने कार्य किया मानेंगे तो श्रद्धा खोटी ठहरेगी, झूठी होगी, जिसको मिथ्या तो कहते हैं कि निमित्त ने ज्ञान कराया, इंद्रिय ने शरीर की द्रव्येन्द्रियों ने जाना, निमित्त ने कार्य किया मानेंगे, परंतु वहाँ जानने वाला जीव अलग है, तब वहाँ निमित्त रूप से इंद्रिया होती है। आगम ज्ञान तो प्रमाण ज्ञान है, उसमें उपादान निमित्त आदि सभी बातों संबंधी चर्चा और स्वरूप कथन किया जाता है। आगम द्वारा वस्तु का सर्वांगी यानी सर्व ओर से स्वरूप अपने ख्याल में आता है। द्रव्यान योग द्वारा इस बात का पता चलता है कि जीव इन सबसे भिन्न है, स्वतंत्र है, क्योंकि वो जीव का स्वरूप हम समय सार में पढ़ते। अब यहाँ कर्णान योग में हमने क्या, वो कैसे कैसे संयोग में जीव है, कहाँ कहाँ है, अभी कौन सी पर्याय चल रही है, कौन से भव में है, उसका ज्ञान कितना है, ये सारा ज्ञान हमें आगम के द्वारा पता चलता है। अभी भी ये मनुष्य जीव है, यहाँ 10 प्राण है, ये सारी बातें समझ में आने पर भी जीव कैसा है तो ज्ञान दर्शन वाला है, उसका स्वरूप कैसा है, उसका सारा द्रव्यान योग में कथन आ जाएगा। इन सभी बातों का यथार्थ ज्ञान करने के पश्चात त्रिकाली अभेद ध्रुव निज कारण परमात्मा पर दृष्टि एकाग्र करने पर, यानी मैं हमेशा रहने वाला ऐसी कायम टिकने वाली चीज हूँ, उस पर जब हम दृष्टि अपने मैं आत्मा हूँ ना, उस आत्मा की दृष्टि करने पर यानी उसको जानते रहने पर, उसमें एकत्व स्थापित करने पर, ये शरीर है इसका ज्ञान तो किया, परंतु अपनापन किसने ले जाना है, अभी ये जानने रूप जो मैं हूँ वही मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ऐसा जब हम जानेंगे उसकी प्राप्ति सुलभ है। जो प्रत्यक्ष विराजमान है उसकी दृष्टि करने पर यह स्व भगवान आत्मा क्यों नहीं प्राप्त होगा, अवश्य पर्याय में प्रकट होगा ही। आज का विषय हो गया, समझ में आए प्राण, तो आप प्राण से रहित हो जाओगे कभी, क्या हमेशा रहेगा प्राण आपका आपके पास, हाँ? भाव प्राणों से हम कभी रहित होंगे क्या, नहीं। तो अभी डरने की कोई जरूरत नहीं है मरने से, मरण होगा नहीं हमारा, हम तो जीव है ना, बस ये तो ख्याल में लेना है सर। इंद्रिय प्राण नहीं है, यानी भावेंद्रियों से जो जानने रूप कार्य है, कार्य से कहा ना उन्हें प्राण, इंद्रियों के द्वारा जो जानने का कार्य है, भावी इंद्रियों के जानने का कार्य वो नहीं है, सूक्ष्म ज्ञान नहीं, इसलिए इंद्रिया भी नहीं और मन बल प्राण भी नहीं है, दोनों जहाँ वाणी के ज्ञान तय सोझे लो कालो सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो।